इनायत जानती थी कि उसके पेरेंट्स को यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा, उनका सौदा होगा। मिस्टर रायचंद जरूर उनके बदले कुछ न कुछ मांगेंगे। वो आंखों में सवाल लिए उस फाइल को देखने लगी जो अब कायरव के हाथ में थी, और वो भावहीन सा उसे पढ़ रहा था। अंत में कायरव ने वो फाइल बंद की और व्यंग्य से होंठ टेढ़े किए। मुझे यहां आने से पहले ही पता था कि आप ऐसा ही कुछ करेंगे। अगले ही पल कायरव ने वो फाइल उनके सामने पटक दी और गंभीर स्वर में बोला, मुझे आपकी ये डील मंजूर नहीं है, मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा। अगर अब आप इन दोनों को मारना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपको ऐसा करने से रोकूंगा नहीं, मार दीजिए इन्हें। कायरव का डिसीजन सुनकर इनाया चौंक गई। मिस्टर रायचंद भी कुछ हैरान हुए और भौहें से कोड़े शक भरी नजरों से कायरव को घूरने लगे। वहीं सविता जी और प्रकाश जी के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया, वो घबराए हुए से एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन कुछ भी करने से पहले इतना जरूर याद रखिए कि अगर आपने अभी इन लोगों के साथ कुछ भी गलत किया तो उसकी सजा के लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि यहां आने से पहले मैंने कमिश्नर को सब बता दिया था, वो किसी भी वक्त यहां आते होंगे। अगर आपने इन्हें किसी भी तरह से कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो आपको जेल जाने से कोई बचा नहीं पाएगा, और मैं तो ऐसी कोई कोशिश भी नहीं करूंगा। उल्टा आप पर इनाया की किडनैपिंग, ब्लैकमेलिंग और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस और कर दूंगा। उसके बाद अपनी आगे की जिंदगी शौक से जेल में बिताइएगा और वहां बैठकर हमारे खिलाफ जितनी मर्जी प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहिएगा। कायरव का लहजा सख्त था और चेहरा कठोर, जैसे उन्हें धमकी दे रहा हो। जैसे ही वो चुप हुआ, बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज आनी भी शुरू हो गई और कायरव के होठ के किनारे हल्के से मुड़ गए। लगता है वो आ गए। इनाया के चेहरे के भाव कुछ नॉर्मल हुए। बेचारे सविता जी और प्रकाश जी की भी जान में जान आई, वरना अभी तक तो उनकी सांसें अटकी हुई थीं और डर से उनकी हालत खराब थी। लेकिन मिस्टर रायचंद का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उनकी आंखों के आगे उनका बना बनाया प्लान बर्बाद हो गया, ये सच्चाई उनसे बर्दाश्त नहीं हुई और वो गुस्से से बौखलाए कायरव की तरफ बढ़े। लेकिन उसके गार्ड्स ने उन दोनों को कवर कर लिया। ठीक उसी वक्त कुछ ऑफिसर्स के साथ कमिश्नर अंदर आए। उन्होंने जमीन पर बैठे सविता जी और प्रकाश जी पर सरसरी नजर डाली। दोनों काफी डरे हुए लग रहे थे। प्रकाश जी के सर पर पट्टी बंधी थी, हाथ पर भी कई जगह बैंडेज लगी थी। उन्हें देखकर कोई भी बता सकता था कि वो हॉस्पिटल से सीधे यहीं आए हैं। कमिश्नर चलते हुए कायरव के पास पहुंचे। फॉर्मल हैंडशेक के बाद कायरव ने प्रकाश जी और सविता जी की तरफ नजरें घुमाते हुए कहा, सर ये है मेरी वाइफ के पेरेंट्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। आप खुद उनसे पूछ सकते हैं या आपको सब सच सच बताएंगे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा था। बाकी बातें मैं कॉल पर ही आपसे क्लियर कर चुका हूँ, तो आप इस केस को अपने अकॉर्डिंग हैंडल करिए। मैं चलता हूँ क्योंकि अब यहाँ मेरा कोई काम नहीं, और मेरी वाइफ की कंडीशन तो आप देख ही रहे हैं, ये सब देखना उसके लिए ठीक नहीं है। कायरव सीरियस था, लेकिन उसकी बातें सुनकर मिस्टर रायचंद और इनाया के पेरेंट्स दोनों ही चौंक गए। कमिश्नर ने तुरंत सर हिलाया। कुछ बातें हुई, सर अब आप जा सकते हैं, यहाँ का संभालने के लिए अब हम हैं। थैंक यू। कायरव ने एक नज़र तीनों पर डाली, फिर इनाया का हाथ थामे गार्ड्स के साथ बाहर जाने लगा। कमिश्नर ने अब मिस्टर रायचंद का रुख किया। रायचंद साहब, आप इन्हें आज़ाद करना चाहेंगे या इन्हें हॉस्टेज बनाने और मारने की कोशिश करने के इल्ज़ाम में जेल जाना पसंद करेंगे? कमिश्नर का चेहरा सर था और अंदाज धमकी भरा। मिस्टर रायचंद बुरी तरह खिसिया गए। जबड़े भींचते हुए उन्होंने अपने गार्ड्स को कुछ इशारा किया और वो दोनों को छोड़कर पीछे हट गए। कमिश्नर के होठों पर तिरछी व्यंग्य भरी मुस्कान उभरी। नाइस डिसीजन, उम्मीद करता हूँ कि आप दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि आज तो हम आपको यूं ही छोड़ रहे हैं, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। तब आप पर केस भी होगा और आपको जेल भी जाना होगा। कमिश्नर ने उन्हें धमकी दी, फिर प्रकाश जी और सविता जी को अपने साथ लेकर बाहर जाने लगे। मिस्टर रायचंद की आंखें खून से लाल हो चुकी थीं। उसने मुठ्ठियां इतनी जोर से भींच ली कि उंगलियां सफेद पड़ गईं। आवाज धीमी लेकिन बेहद डरावनी थी। कायरव, आज तूने मुझे रोक लिया, बहुत बड़ी गलती की है तूने। मैं इन लोगों को अभी छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रख, ये सिर्फ एक टेम्प्ररी सेटबैक है। मैं वो सब कुछ वापस लूंगा जो मेरा है, और जब मैं वापस आऊंगा तब सिर्फ इनाया नहीं, तुम दोनों को एक साथ तोड़ दूंगा। गुस्से में दहाड़ते हुए उन्होंने सामने रखे टेबल को इतनी जोर से पटका कि सारी चीजें हवा में उछल पड़ी। ग्लास टूट गया और उसके टुकड़े फर्श पर बिखर गए। उसकी गुस्से भरी दहाड़ पूरे हॉल में गूंज गई। कायरव और इनाया के कदम पल भर को ठिठके जरूर, लेकिन वो रुके नहीं। कायरव, तुम्हारे डैड क्या बोल रहे थे? क्या छीन लिया तुमने उनसे जो वो तुमसे वापस मांग रहे थे? इनाया ने चलते चलते सवाल किया जो काफी देर से उसके दिमाग में घूम रहा था। कायरव ठहरा और निगाहें उसकी तरफ घुमाई। इस वक्त रायचंद इंडस्ट्री और हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो मेरे अंदर है। डैड के बैंक अकाउंट तक फ्रीज किए जा चुके हैं। बहुत गुरूर था उन्हें अपने पैसे और पावर पर, और मैंने उनका वही गुरूर तोड़ा है। इनाया को झटका लगा और आंखों की पुतलियां फैलाए शॉक सी उसे देखने लगी। क्या हुआ? कायरव ने उसके आगे चुटकी बजाई। तब जाकर इनाया होश में लौटी और उसने हड़बड़ाते हुए इनकार में सर हिला दिया। दोनों बात कर ही रहे थे कि उनके सामने एक कार आकर रुकी। डोर खुला और अंदर से मिसेज रायचंद बाहर निकली। कायरव और इनाया को अपने सामने देखकर वो हैरान भी थीं और खुश भी। उन्होंने उनके तरफ कदम बढ़ाए। अगले ही पल उनका ध्यान पीछे गया। कमिश्नर के साथ प्रकाश जी और सविता जी बाहर ही आ रहे थे। पुलिस को अपने घर से निकलते देखकर वो चौंक गई, और जैसे ही नजर उनके साथ चलते प्रकाश जी पर पड़ी उनका चेहरा पीला पड़ गया। पलकों ने झपकने से इनकार कर दिया और आंखों के आगे कुछ धुंधली तस्वीरें घूमने लगी। सविता जी से कुछ बात करते प्रकाश जी की नजर जब कुछ कदमों की दूरी पर खड़ी मिसेज रायचंद पर पड़ी, उनकी जैसे पूरी दुनिया हिल गई। आंखों की पुतलियां यूं फैलीं जैसे उनके सामने कोई भूत आकर खड़ा हो गया हो। उनके कदम लड़खड़ा गए। तुम ठीक हो? सविता जी ने तुरंत उन्हें संभाला। प्रकाश जी की नजर उनकी तरफ घूम गई। उनके चेहरे पर कुछ अजीब से भाव मौजूद थे, आंखों में अजीब सा सोनापन झलक रहा था। सविता जी पर पल भर को उनकी नजर ठहरी, फिर निगाहें एक बार फिर उसी दिशा में घूम गई जहां मिसेस रायचंद खड़ी थी। उनके होंठ कपकपा उठे। संयुक्ता, आवाज इतनी धीमी थी कि उनके बगल में खड़ी सविता जी को भी सुनाई नहीं दी, जो उनके इस अजीब बिहेवियर की वजह से अजीब नजरों से उन्हें देख रही थी। मिसेस रायचंद की पलकें हिली और आंखों से आंसू की एक बूंद फिसल कर फर्श पर बिखर गई। प्रकाश, उनके थरथराते होठों से धीमी सी आवाज निकली। पल भर के लिए वक्त जैसे थमसा गया था। दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिकी थीं और चेहरे पर कुछ कुछ एक जैसे ही भाव मौजूद थे। इस वक्त उन्हें न कुछ और दिखाई दे रहा था और न ही सुनाई दे रहा था, न जगह का एहसास था और न माहौल का। वो एक दूसरे को ऐसे देखे जा रहे थे जैसे जन्मों बाद देखा था, जैसे सदियों से उनकी निगाहों को एक दूसरे का इंतजार हो। सविता जी ने जब प्रकाश जी को एक तरफ देखते पाया तो उन्होंने भी उनकी नजरों का पीछा किया और जैसे ही नजर मिसेज रायचंद पर पड़ी, उनके चेहरे पर अजीब से भाव उभर आए। उन्होंने कस के प्रकाश जी की बांह को पकड़कर झकझोड़ते हुए कहा, इधर क्या देख रहे हो? भूल गए क्या यहाँ हम इनाया से बात करने आए हैं? अगर तुम ऐसे ही यहाँ खड़े रहे तो वो चली जाएगी। उनकी तीखी आवाज और तल्ख लहजा साफ जाहिर कर रहा था कि प्रकाश जी का यूं मिसेज रायचंद को देखना उन्हें पसंद नहीं आया था।
प्रकाश जी हड़बड़ाते हुए होश में लौटे। मिसेज रायचंद पर से नजर हटाते हुए उन्होंने सविता जी को देखा, जो आंखें तरेर कर लाल आंखों से उन्हें घूर रही थीं। चलो चलो, इनाया चली जाए, इससे पहले हमें उससे बात करनी है। प्रकाश जी ने तुरंत उस तरफ कदम बढ़ा दिए जहां इनाया कायरव के साथ खड़ी थी। सविता जी ने जलती निगाहों से मिसेज रायचंद को घूरा, जैसे वो उनकी सबसे बड़ी दुश्मन हो। टू बी कंटिन्यूड।